कुल समाज कुलीन एवं भद्रजन वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में ट्यूडर कालीन इंग्लैंड बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कीमतों में भारी वृद्धि इन दो कारकों से बहुत प्रभावित हुआ। कुलीन वर्ग के लिए तो कीमतों में बढ़ोतरी कई अन्य प्रभावों में से एक था जिन्होंने उनका राजनीतिक महत्व भद्रजन वर्ग की तुलना में कम करने में योगदान दिया। वे अब भी इंग्लैंड के समाज का उच्च वर्ग बने रहे किंतु अब उनका दायरा बहुत संकीर्ण नहीं रह गया था। कई कुलीन वर्ग पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव के कारण ही समाप्त हो गए थे। हेनरी सप्तम ने जितनी नई उपाधियां दी थी वे अधिकतर राजकीय सेवा के बदले में दिए गए पुरस्कार थे। बहुत से कुलीन परिवार बहुत अधिक खर्च करने की अपनी आदत के कारण ऋण में डूब गए थे। भद्रजनों का स्थानीय जीवन एवं संसद में पहले भी महत्वपूर्ण स्थान था किंतु मठों के विनाश के बाद जो भूमि का पुनर्वितरण हुआ उसने उन्हें देश में भूमि का एक अपेक्षाकृत अधिक भाग ही नहीं दिया बल्कि इससे उनकी राजनीतिक सत्ता में भी वृद्धि हुई। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भद्रजन वर्ग के उत्थान की बजाय विस्तार अधिक था। मठों की भूमि के स्वामित्व ने उन्हें प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन से बांध दिया। उसने उनमें यह जागृति भी भर दी कि अब उनका अपने देश के प्रशासन में बहुत अधिक महत्व था। वस्तुतः मठों की भूमि को भद्रजन वर्ग में वितरित करके हेनरी अष्टम ने स्वयं राजतंत्र के लिए एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा कर दिया था। भद्रजन का बढ़ता हुआ महत्व सबसे अधिक स्थानीय प्रशासन में देखा जा सकता है। प्रत्येक काउंटी का नाम मात्र का अध्यक्ष एक लॉर्ड लेफ्टिनेंट होता था किंतु वास्तविक शक्ति 4-5 भद्र पुरुषों के हाथों में होती थी जिन्हें जस्टिस ऑफ पीस नियुक्त किया जाता था। वे न्यायाधीश भी होते थे और प्रशासक भी। ट्यूडर काल में उनके कार्य बहुत बढ़ा दिए गए थे। उसके समय में निर्धनों के लिए जो कानून बनाए जा रहे थे उन्हें लागू कराना भी इन न्यायाधीशों का ही काम था और विद्रोहियों आदि के समय राजतंत्र की सहायता के लिए सेना खड़ी करना भी उनका ही दायित्व था। वास्तव में जस्टिस ऑफ पीस की राजभक्ति के बिना कोई भी सरकार खड़ी नहीं रह सकती थी। राज परिषद के आदेश भी यदि जस्टिस ऑफ पीस के स्वार्थों के विरुद्ध जाते थे तो वे अनसुना कर देते थे। वार्डबंदी आंदोलन के साथ ऐसा हुआ भी था। राजतंत्र के पास इन न्यायाधीशों JPS को बाध्य करने की शक्ति बहुत ही सीमित थी। स्टुअर्ट वंश में कठिनाइयों का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उन शासकों की बहुत सी नीतियां स्वामियों को मान्य नहीं थी अतः उनसे सहयोग की आशा नहीं की जा सकती थी। इंग्लैंड में निर्वाचित सभाओं की परंपरा की दो ऐसी विशेषताएं थीं जो यूरोप में अन्यत्र विद्यमान नहीं थी। इंग्लैंड में कुछ मौलिक एवं सार्वभौमिक अधिकार लिखित प्रमाण के रूप में घोषित किए जा चुके थे जैसे कि मैग्ना कार्टा और इंग्लैंड में शायर के नाइटो तथा शहरी बरोबासियों दोनों को निर्वाचित किया गया था। जेम्स से प्रारंभ करके स्टुअर्ट राजाओं ने एकतंत्रवाद का दावा रखना प्रारंभ किया तो इंग्लैंड में व्यापारी पियरों एवं धनी कुलीन वर्ग के पास उसका विरोध करने का एक परखा हुआ एवं प्रतिष्ठित पारस्परिक तरीका था जो यूरोप के किसी भी और देश में उपलब्ध नहीं था। इंग्लैंड में ट्यूडर एवं आरंभिक स्टुअर्ट नरेशों के निरंकुश राजतंत्रों में अपने वर्ग आधार तथा कानूनी एवं राजनीतिक तंत्र की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। इसी वजह से वहां कृषि वाणिज्य एवं उद्योगों में पूंजीवादी संबंधों का विकास संभव हो सका। गुलाबों के युद्धों के बाद जो वर्ग अस्थायित्व तो चाहते थे जैसे मध्य स्तर के भूस्वामी भद्रजन और कुलीन वर्ग के कुछ भाग उनका समर्थन प्राप्त करके ट्यूडर शासकों ने 15वीं शताब्दी के अंत में सामंती लॉर्डों के गुटवाद को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजा को समर्थन देने वाले इन वर्गों की समृद्धि का आर्थिक आधार पूंजीवादी कृषि का विकास था। इस प्रकार की कृषि में पट्टाधारी किराएदार पगार श्रमिकों की सहायता से उत्पादन का वास्तविक गठन करते थे और भूस्वामियों की लगान संबंधी मांगें कृषिगत उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रेरित करती थी। मठों का विघटन हो गया और उन मठों की संपत्ति अभिजात वर्ग के सदस्यों भद्रजनों तथा संपन्न भूस्वामियों में बट गई। इन गतिविधियों से भूमि का बाजार तैयार हुआ जिससे पद प्रतिष्ठा के पुराने अनुक्रम तथा गैर आर्थिक दबावों द्वारा अधिशेष हड़पने की पुरानी पद्धति और भी ज़्यादा विघटित हुई। 1540 के बाद अनेक नए परिवार अभिजात वर्ग के अंतर्गत शामिल हुए। 1569 में उत्तरी अरलों का विद्रोह सामंती विद्रोह की अंतिम टिमटिमाहट थी। लॉरेंस स्टोन के शब्दों में, जब तब लोगों को फांसी पर लटकाकर तथा उन्हें हमेशा के लिए बदनाम करके और पुराने भूस्वामी परिवारों के समाप्त हो जाने पर उनके स्थान पर नए भूस्वामी परिवारों के विकास पर रोक लगाकर ट्यूडर और नरेश बड़े क्षेत्रीय जमींदारों की संख्या घटाने में सफल हो गए, जो इन्हें गिने परिवार 15वीं शताब्दी के अंत तक समाज एवं राजनीति पर हावी थे। उनमें से केवल हावर्ड परिवार ही ऐसा था जो 17वीं सदी के तीसरे दशक तक बचा हुआ था और वह भी काफ़ी सीधा हो गया था। ट्यूडर राजतंत्र ऐसा कोई कानून ढांचा अथवा नौकरशाही तंत्र विकसित करने में असमर्थ रहा जैसा कि यूरोप के निरंकुश राजतंत्र ने किया था। यूरोप में रोमी कानून अपने के दोहरे उद्देश्य की ओर ऊपर इशारा किया जा चुका है। सिविल मुकदमों में उसमें असीम निजी संपत्ति की स्पष्ट अवधारणा तथा अधिक तेज कानूनी प्रक्रिया द्वारा संपत्तिशाली वर्ग की सहायता की। दूसरी ओर सम्राट से संबंधित मामलों में उसने राजा की निरंकुश सत्ता को दृढ़ किया। इंग्लैंड में रोमन कानून का अध्ययन तो किया गया किंतु उसे केवल आंशिक रूप से लागू किया गया और वहाँ के लोकविधि एवं संविधि कानून से उसका सामंजस्य भी स्थापित किया गया। लोकविधि न्यायालयों में जिन संपत्ति संबंधी मुकदमों के निपटाने में देरी होती थी उनसे निपटने के लिए राजाओं ने कोर्ट ऑफ चांसरी तथा कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट स्थापित किए। चांसरी ने, जिसकी स्थापना ट्यूडर काल से पहले ही हो चुकी थी, उन कानूनों का विकास किया जिन्हें इक्विटी के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में स्थापित कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट ने काफ़ी होल्डरों को सस्ता एवं अविलंब न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। यह न्यायालय इस बात का उदाहरण था कि ट्यूडर राजा किस प्रकार यह कोशिश कर रहे थे कि विभिन्न वर्गों के बीच निष्पक्ष मध्यस्थ प्रतीत हो। यूरोपीय महाद्वीप में करारोपण की आवश्यकताओं ने नौकरशाही के विकास में योगदान दिया और नौकरशाही के विकास से और अधिक करों की मांग को बढ़ावा मिला। ट्यूडर कालीन इंग्लैंड में हेनरी अष्टम को छोड़कर, विशेषकर जब कार्डिनल वुलजे उसका मंत्री था, सभी राजा इस बात के प्रति सावधान थे कि उन्हें अपनी शाही जमीन से प्राप्त होने वाली आमदनी में ही काम चलाना है। इसलिए प्रायद्वीप के अन्य देशों में जिस स्तर पर करों में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई थी, उस स्तर पर इंग्लैंड में यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में मध्ययुगीन संसद को संपत्तिशाली वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लिया गया। लॉर्ड एवं जनसाधारण दोनों ही अपने ऊपर कर लगवाने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि खर्च की जाने वाली राशि को उनकी स्वीकृति प्राप्त हो। इसकी तुलना फ्रांस में कुलीन वर्ग की करारोपण से छूट और वहां के स्टेट्स जनरल के अनुपयोगी हो जाने से कीजिए। इंग्लैंड में शाही नौकरशाही के स्थान पर मध्य वर्ग के भूस्वामी वर्गों में से लिए गए जस्टिसेज ऑफ पीस तथा नव अभिजात वर्गीय परिवारों के विश्वसनीय सदस्यों में से लिए गए काउंटियों के लॉर्ड लेफ्टिनेंट ही देश में कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी थे। वे ही विभिन्न प्रकार के संपत्तिशाली वर्गों के झगड़ों में मध्यस्थता करते थे, उन्हें ही उस ग्रामीण समाज की कठिनाइयों से सामना करना पड़ता था जिसमें विशिष्टीकरण की वजह से विभिन्न स्तर बनते जा रहे थे और जो उत्तरोत्तर वाणिज्य आधारित होता जा रहा था। आंग्ल क्रांति, दीर्घकालीन संसद एवं गृह युद्ध उस समय हुई जब दो दशकों के व्यापारिक उतार चढ़ाव, ग्रामीण असंतोष और मनमाने करारोपण की वजह से विभिन्न वर्गों, भूमिधर किसानों, व्यापारियों एवं शिल्पियों की आरंभिक स्टुअर्ट राजाओं के सौम्य किस्म के निरंकुश राजतंत्र में भी कोई आस्था नहीं रह गई थी।